ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ।
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747171।
ਹਾਊਸ ਸੀਟ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਆਰੋ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਦੀਵਾਨੀ, ਹੋ ਸ਼ੁੱਧ ਖੋਏ ਦੀ ਜੇ ਮਿਠਿਆਈ, ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਤੇ ਵੈਜ ਫੂਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਤੂਫਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਨੀ ਕੋਈ ਸਾਨੀ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, 416-696-9999 ਤੇ, 416-679-9191।
ट्रक ड्राइवर भाइयों, अब यूएस और कनाडा में अनलिमिटेड डाटा, वीवो टेलीकम्युनिकेशंस के साथ फुल स्पीड, नो रुकावट, सफर बिजनेस का हो या शौक का, वर्ल्ड वाइड ही सिम डाटा प्लान के साथ इंटरनेट हमेशा रेडी। ट्रैवल कर रहे हो इंडिया, पाकिस्तान या हज या उम्रे के लिए, वीवो टेल के साथ हमेशा रहो ऑनलाइन, दूर दराज इलाका कोई प्रॉब्लम नहीं, घर हो या केबिन, वीवो टेल की हाई स्पीड इंटरनेट चलती है दुनिया के किसी भी कोने में। विजिट करें vivotel.com या कॉल करें 416-243-9836। कनेक्शन आपका दुनिया के साथ।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, ya call karo 905-450-2828-905-450-2828.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਨਵਾਂ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਾਲ, 100-600 ਤੱਕ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਵੱਡੀ ਆਸਾਨ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਠੀਕ ਮਹਿਲ ਦਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾ ਜੀ, 416-736-6820, 416-736-6820।
ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਮੋਹਰੀਨਾ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਫਲੀਟ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵਡ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਸਟ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਆਇਲਸ, ਫਿਲਟਰਸ, ਇੰਜਨ ਦੀ ਜਾਨ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਿੰਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ QTL, ਐਗਜ਼ਿਟ 268 ਹਾਈਵੇ 401 ਕੇਂਬ੍ਰਿਜ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਹਾਈਵੇ 401 ਨੈਪਨੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ 5 QEW ਫੋਰਟ ਏਰੀ। ਸਰਵਿਸ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ QTL, 519-622-0660, ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜ਼ੀ ਜਾਵੇ।
ਕੋਈ ਮਾਂਗੇ ਮੀਠਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਮਕੀਨ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੋ ਪੱਕੀ ਹੈ,
ਸਭ ਹੈ ਇਸਕੀ ਸ਼ੌਕੀ, ਯੇ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ,
ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਵੀਟਸ, ਯੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ ਸਵਾਦ ਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਖੁਦ ਆਈਏ, ਦੋਸਤੋ ਕੋ ਵੀ ਲਾਈਏ,
ਯੇ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ।
Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
Chandni
Banquet Hall.
Intelligent choice, locations, sound system, innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Indoor and outdoor golf course facilities. Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888. 905-458-8888. Or visit chandnivictoria.ca.
Chandni.
क्या आप ढूंढ रहे हैं असल शनवारी जायका? तो आइए शाहीन शनवारी कढ़ाई एंड बारबेक्यू, जहां ताज़ा मसालों से तैयार की जाने वाली लजीज कढ़ाई, बारबेक्यू, पाकिस्तानी और अगवान पकवान आपके मुंतजर हैं। 100 से ज्यादा अफराद की गुंजाइश, जहां आप अपनी गेट टुगेदर, बर्थडे पार्टीज और खसूसी तकरीबात के लिए बेहतरीन इंतखाब है। तो आपने पहुंचना है 4190 किंगस्टन रोड, स्कारब्रो। कैटरिंग या डाइनिंग के लिए कॉल करें 647-438-8571, 647-438-8571, शाहीन शनवारी कढ़ाई एंड बारबेक्यू।
جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے فارم ظفر پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم ٹو دس شو. الحمدللہ آج کے دن پھر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں. پرسوں سیٹرڈے کو یقیناً میں آپ ہم تمام کے تمام اپنے ٹیلی فونز کے اوپر الرٹ ریسیو کر رہے تھے. ٹورنیڈو واچ تھی. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیریت سے اس میں سے نکالا. ایک دعا کے ساتھ پروگرام شروع کرنا چاہتی ہوں. بہت خوبصورت مجھے لگی اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ہمارے بہت پیارے ایک بھائی ہیں انور بھائی. ظاہر ہے بعض اوقات واٹس ایپ کے اوپر کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحد ہے لا شریک ہے, اس کا کوئی ہم اثر نہیں ہے. اور یہ دعا مجھے بہت اچھی لگی. یقیناً ایک مختصر سی دعا ہے اور قرآن کی آیتوں میں سے ہی یہ دعا ہے. چھوٹی سی دعا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, آپ اس کو سماعت فرمائیے. واپس آئیں گے پروگرام میں. اسی طرح میرے ساتھ رہیے. کیا وجہ ہے؟
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
جیسا پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. بہت خوبصورت دعا ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا ہوگا. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے پناہ کرم کرنے والا ہے. ہم صبح کو پہنچ چکے. جو آیات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, ہم صبح کو پہنچ چکے. اس وقت تمام بادشاہت اللہ کی ہے. تمام تعریفیں اللہ الصمد, تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قطعاً کوئی بھی شریک نہیں ہے اس دنیا میں اور اس کے بعد بھی. بادشاہت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں. یقیناً میں اور آپ آج کے دن کی بھی بھلائی چاہتے ہیں. اور قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اس کے بعد آنے والے دن کی شر کی بھی پناہ مانگتی ہوں اور میں سستی سے بھی پناہ مانگتی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو بے بس بڑھاپا نہ دے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہر طرح کے عذاب سے بچا کے رکھے. یقیناً موت کی تنگی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فراہم فرمائے. امین سم امین. سن رہے ہیں پروگرام ساز آواز, میں آپ کے ساتھ عارفہ مظفر. بہت خوبصورت پروگرام چرنجیت برار اپنے لحاظ سے پیش کرتے ہیں. چرنجیت برار کا پروگرام 2 سے 3. ویسے تو 770 پہ مختلف پروگرام پورا ویک آپ سنتے ہیں. جیسے منڈے کو آج کی اگر بات کرتی ہوں مارننگ آور میں لیاقت ملک صاحب نے پروگرام کی ابتدا کی. اس کے بعد جگدیش گریوال صاحب, جناب گرپیت پربا صاحب پروگرام میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد سوری ناگرا صاحب نے پروگرام کو پیش کیا. 11 سے 12 کا ٹائم اویلیبل ہے. آف کورس اس میں ہم اپنے 770 کے جتنے ہمارے اسپانسرز ہیں ان کو کور کرتے ہیں اور آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کا پروگرام یعنی گیت سنگیت پیش کیے جاتے ہیں. 12 سے لے کے 2 بجے کے درمیان رنبیر چوہان صاحب اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں جس میں پاکستان کی نیوز, انڈیا کی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور آپ کی پسند کے گیت بھی لگاتے ہیں. And of course, इन स्पॉन्सर्स को जरूर ताबन दिया कीजिए, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम के साथ हो। 2 से 3 का आज का प्रोग्राम चरणजीत बरार साहब ने पेश किया, 3 बजे हम आपके साथ हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में जो हमने आपसे बातचीत करनी है, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ऑन्टेरियो के नॉर्थ की तरफ आग का जो सिलसिला है, आग तेजी से बढ़ती चली जा रही है, उसके बारे में तस्करा करेंगे। जनाब डबफोर्ड साहब ने आज उसके बारे में अपना बयान दिया है। एक और चीज जो कि बड़ी खुशायंद है कि 20 साल में पाकिस्तान कनाडा की किसी फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को विजिट किया, जिसमें मोहतरमा अनीता आनंद साहब पहुंची है। इंडो पैसिफिक का उनका ये दौरा है, पाकिस्तान के बाद फिलीपींस की तरफ वो बढ़ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। कल एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू भी हमने आपके साथ शेयर करना है। और आज के प्रोग्राम में जहां और स्पेन के लिए बहुत पुपारिक बात, वो जिन लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि स्पेन जीतेगा, एट द 11th आवर पे भी गेम से पहले जिन लोगों ने कॉल कर लिया, तो मेरा ख्याल है ड्रॉ में नाम शामिल करना कोई बुरी बात भी नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें से हम में से कोई भी नहीं है, मगर अगर किसी ने गेम शुरू होने से पहले सुना, इस मौके पे बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी हेल्प मांगी गई, चैट जीपीटी से मांगी गई, क्लाउड से मांगी गई, उन्होंने अपनी अपनी राय दी और सबका जो पलड़ा भारी था दैट वॉज टू वर्ड स्पेन। आज हम ऑफिस में जिक्र कर रहे थे, हमारी एक बहुत प्यारी बेटी, मैं कह सकती हूँ, मैंने उनको देखा नहीं, बेटी बहन सरबत साहिबा, उन्होंने बार बार स्पेन का फ्रॉम द डे वन शी वॉज वेरी फोकस्ड फॉर स्पेन। तो आज एक ड्रॉ भी होगा, हम आपके साथ ड्रॉ शेयर करेंगे। इट्स अ वेरी नाइस गिफ्ट, ऑफकोर्स इट्स जस्ट अ गेम, और गेम में शामिल होना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगेन छोटी छोटी खुशियां हैं जो बांटने की बात है। स्पेन की जो तमाम के तमाम प्लेयर्स, डोनाल्ड ट्रंप साहब बाद में आखिर में मेडल्स देने के लिए स्टेज के ऊपर मौजूद थे, स्पेन के एक प्लेयर ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, अपना मेडल बता उनसे ले लिया और डोनाल्ड ट्रंप साहब स्टेज के ऊपर ज्यादा देर तक रहे। यकीनन इस फीफा वर्ल्ड कप में बहुत सारी चीजों ने जन्म भी लिया, और कहा जाता है कि अर्जेंटीना के बारे में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था जो भी थे, वल्ला आलम बिस्सवाब, इसमें कहां तक सच है कहां तक गलत है। वर्ल्ड वॉर के लिहाज से हम जिक्र करना चाहते हैं, वर्ल्ड वॉर से मुराद ये कि मुख्तलिफ चीजें ऑटोमेटिकली इसमें शामिल होती चली जा रही हैं। आप देखिएगा, सिंस दिस ईरान का अटैक हुआ है, यूक्रेन की पॉलिसी भी थोड़ी सी चेंज हुई है। क्रीमिया में इवन लाइट गई हुई थी और यूक्रेन ने अपने जो अटैक्स हैं उनमें जरा ज्यादा सख्ती और ज्यादती उनकी हो गई है और ज्यादा इंटेंस अटैक्स हैं। क्रीमिया डार्कनेस में डूबा हुआ था, रशिया की आई डोंट नो, इतना अरसा सुपर पावर है दुनिया की, मगर ये जंग इतनी लंबी क्यों हो गई। अलबत्ता अगर हम स्टेट ऑफ कॉमर्स का जिक्र करते हैं तो अमेरिका ने भी अपनी ब्लॉकेट को जारी किया है, उधर से अब इसने नया टर्न लिया है। अब स्टेट ऑफ कॉमर्स की तो बात कर ही रहे हैं, मगर रेड की सी की तरफ जो ईरान सपोर्टेड हौसी बागी हैं उन्होंने ब्लॉकेट शुरू कर दिया, अराउंड 7% के करीब मोर ब्लॉकेट, जो ऑयल की शॉर्टेज है वो ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा फोकस जो हौसी बागियों का है दैट इज टूवर्ड्स सऊदी अरेबिया के लिए है। तो यकीनन आज के प्रोग्राम में उसका भी जिक्र करेंगे। यकीनन स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को कंट्रोल करते करते नाउ रेड सी के ऊपर भी पाबंदी आ गई है, लेट्स सी क्या हो। आज मैंने 2 प्रेडिक्शंस के बारे में जिक्र करना है, दोनों प्रेडिक्शंस एक तो यूरोपियन है, वेस्टर्न है, जिनकी प्रेडिक्शन है उनकी पहली प्रेडिक्शंस भी दुरुस्त रही हैं, और ये प्रेडिक्शंस जो हैं दुनिया की बदलती हुई रवैये, यानी 2026-27 एंड टू बी मोर रिजर्व 28 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो जॉब लॉसेस होंगे और दुनिया जिस तरफ बढ़ेगी उसका इजहार है। एक और जो प्रेडिक्शंस हैं ये भी प्रेडिक्शंस यानी 2026 के बारे में है कि दुनिया में आगे भी ज्यादा लगेगी, जलजलों की शिद्दत भी निस्बतन ज्यादा होगी, उन प्रेडिक्शंस का भी आज जिक्र करेंगे हम आपके साथ। बस इसी तरह से बातें करते हुए हम आपसे निकलेंगे। 3:35 पे हमारे साथ जनाब समीउल्ला मलिक साहब होंगे। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम जिक्र करते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि 20 इयर्स में किसी भी फॉरेन मिनिस्टर ने फर्स्ट टाइम, अनीता आनंद साहब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब से उन्होंने मुलाकात भी की, और पाकिस्तान का जो रोल है एज ए मीडिएटर उसको भी उन्होंने सराहा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मगर एक और चीज जो पाकिस्तान में इस वक्त है, मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने पिछले कदम पे जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आज उनका एक बयानिया भी मुझे आपके साथ शेयर करना है, और यकीनन ये बयानिया हम शेयर करेंगे जब जब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब बिटर ट्रुथ से हमारे साथ शामिल होंगे। डॉक्टर साहब के आर्टिकल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डिफरेंट न्यूज पेपर, डिफरेंट लैंग्वेजेज में जाते हैं, और उनका क्या पेशगोई है इसके बारे में। जाहिर है अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो दूसरा बयानिया है वो और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा थोड़ा सा सीरियस हो गया। कनाडा की खबरों के बीच में जो चीजें मैंने आपके साथ कवर की हैं, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया ही है कि द वर्स्ट थिंग इज कि आग का जो है वो, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उनसे कहा है कि भी आग और स्मोक को आप कंट्रोल करें। हाउ कैन यू कंट्रोल द एनवायरनमेंट, हाउ कैन यू, और कौन सा मुल्क जो है वो पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, कौन से ममालिक हैं जो पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं और जिसका जुर्माना तमाम की तमाम दुनिया अदा कर रही है, खासतौर पर गरीब ममालिक जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, हालांकि दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग दैट मच इन टू दी यू नो एनवायरमेंट की पोल्यूशन के बीच में इतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। डग फोर्ड साहब ने कहा है कि आग बड़ी तेजी से अपनी बढ़ रही है, और उन्होंने आज नॉर्दर्न ऑन्टेरियो में वाइल्ड फायर और इवैक्यूएशन से मुतालिक जो अपनी अपडेट दी है, हम उसको भी आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। हम आपके साथ आरिफा मुजफ्फर हैं। मैं शुक्रिया करना चाहती हूं अपने तमाम स्पॉन्सर्स का जिनकी वजह से हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं, और तमाम के तमाम लिसनर्स से मैं दरख्वास्त करती हूं कि प्लीज इन स्पॉन्सर्स को जरूर तावन दिया कीजिएगा, इन्हीं की वजह से हम ये प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं। और बींग 770 AM एज योर चैनल, एज ए कम्युनिटी चैनल, वी डू हैव मोर लाइबिलिटीज, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसमें जरूर आप स्पॉन्सर्स को, प्रॉमिस कि हम आपके साथ बड़ी ड्यू डिलिजेंस के साथ तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेक ऑफ एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, वी डेफिनेटली पे द प्राइस फॉर दैट एज वेल। यकीनन शुक्रिया अदा करना चाहती हूं छोटे और बड़े बिजनेसेस का जो हर लेवल के ऊपर हमें सपोर्ट करते हैं। KPNR तंदूरी ग्रिल का मैंने हमेशा आपके साथ जिक्र किया, ओशवा में 11 टॉन्टन रोड एंड सिमको के इंटरसेक्शन पे जनाब शेख रशीद साहब इसको रन करते हैं। आपने चने और चने जो आप खाएंगे उसमें आपको बेख्तियार लाहौर नीला गुम्बद की याद आएगी, या फिर आपको याद आएगी चौबुर्जी की। कराची में भी जरूर चने होंगे, मगर भाई लाहौर के ये चने तो whenever we talk about it's always mouth watering. KPNR Tandoori Grill, they are on 11 Taunton Road. उनके ऊपर तो फोर स्किप द डिशेज और बाकी तमाम के तमाम रिसोर्सेज में भी आप मंगवा सकते हैं। इनके जो भरे हुए पराठे, तंदूरी पराठे, चाहे वो कीने के हों चाहे वो आलू के हों, वो बड़े पसंद किए जाते हैं। एंड KPNR तंदूरी ग्रिल का नंबर आप नोट कर लीजिए 2892400910, 240-09910 उनका नंबर है। मेगा मनी एक्सचेंज आज ओपन है, अगर आपने रकम पाकिस्तान भेजनी है तो मेगा मनी एक्सचेंज से बात एंड मिसेज से बात, लेकिन और बल्कि उनकी अब माशाल्लाह टीम बढ़ गई है। वक्त के साथ जब इंसान का बिजनेस बढ़ता है तो टीम मेंबर्स भी बढ़ते चले जाते हैं, एंड ये हम आपको यकीन दिलाते हैं कि दे आर ट्रस्टवर्दी एंड दे आर वेरी रिलायबल। 9052794754 बीवर टेलीकम्युनिकेशन का बहुत शुक्रिया। आप कहां जा रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, आपको किसी दूसरी सिम की जरूरत नहीं है, आपको कोई रोमिंग की जरूरत नहीं है। इस कंपनी के पास, बीवरटेल के पास अराउंड 190 से 200 तक के जो कंट्रीज एंड प्लेसेस हैं उसके लिए इंटरनेट आप हासिल कर सकते हैं। आप चाहे यूरोप की विजिट के लिए जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, उमरे के लिए, बाय द वे उमरे के लिए तो अब सऊदी गवर्नमेंट ने एक साल का मल्टीपल वीजा दे दिया, यानी अगर आपका दिल करे तो बस आप छींक मारे और उमरा करने पहुंच जाए। ठीक, तो आप डेटा जो आपने लेना है वो बीवर टेलीकम्युनिकेशन से लें, बल्कि बहुत सारे ग्रुप्स जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इफ यू आर टेकिंग एनी ग्रुप, आप अपने ग्रुप मेंबर्स को ये बीवर काशवा साहिबा हज के दिनों में जब गई थी तो वो अपने मेंबर्स के लिए बीवर टेलीकम्युनिकेशन का डेटा हासिल करके लेके गई थी। मैं डेफिनेटली वो फीडबैक भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बीवर टेलीकम्युनिकेशन, बी टेल, बी फॉर बॉब, TEL, बी टेल पे अगर आप लॉग ऑन हो तो यू कैन सी ऑल द सर्विसेज व्हाट दे प्रोवाइड एंड हाउ इजी इट इज। دیجیے صاحب آئیے چند ایک اور امپورٹنٹ نیوز کی طرف ہی چلیں گے اور پھر اس کے بعد واپس آئیں گے. میں جن سے اونٹیریو کا جو ہمارے پرائم منسٹر کو میرا خیال ہے پہلے پروڈکشنز کی بات کر لی جائے تو بہت اچھی بات ہے. یہ شخص جس نے 2008 میں جو مالی بحران ہے یعنی جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس کی پیشین گوئی کی تھی 2008 میں, آپ کو یاد ہوگا 2009 واز لٹل ڈیفیکلٹ, اس نے ایک اور وارننگ جاری کیا. اچھا اب یہ اس نے تو وارننگ دیا, آئی کیم اکراس سمبڈی ایلس ان پرسن یسٹرڈے اینڈ بیکاز یہ شخص بھی سائبر سیکورٹی سے ہے اینڈ دے ڈو ہیو انفارمیشن ان سیٹ یو نیکسٹ کپل آف ایئرز اینڈ ٹو بی ویری ریزروڈ آئی ووڈ سے بائی 2028 تک جو ہے اے آئی کا جو کنٹرول ہوگا. اس میں سسٹم وہی تصور کیا جا رہا ہے جو میکسیکو کا سسٹم ہے, یعنی لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ جتنے سے وہ ضرورت اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں. یہ برطانیہ کے ایک صحافی ہیں اور آئی ٹی وی نیوز کے سیاسی ایڈیٹر رابرٹ پیسٹن ان کا نام ہے. انہوں نے دنیا کو خبر کیا, جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں رابرٹ پیسٹن کی آپ پکچر دیکھتے ہیں, ہی از جینونلی اینکشس کہ میجر مارکیٹس کریش کریں گی اور انہوں نے خبردار کیا کہ دنیا ایک اور بڑے مالی بحران کی طرف پڑ رہی ہے. اس بار اس کی بنیادی وجہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. رابرٹ پیسٹر نے 2008 کے عالمی مالیاتی بحران اور COVID-19 کے بارے میں بھی انہوں نے اپنا ذکر کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ واقعی آج کے دور میں یعنی کووڈ سے بھی بڑھ کے اور اس سے بعد کی بھی جو صورتحال میں نے آپ نے دیکھی اس سے بڑھ کے ہے. انہوں نے کہا صورتحال واقعی بہت تشویشناک ہے کیونکہ دنیا بھر میں اے آئی ڈیٹا سینٹرز بجلی گھروں اور دیگر ڈھانچے پر بے پناہ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے اور یہ چند جو بڑے لوگ ہیں ایوری تھنگ ول بی ان دیئر کنٹرول. انہوں نے کہا ہے کہ اگر اے آئی کمپنیوں کی آمدنی توقعات کے مطابق نہ ہوئی تو بہت سی کمپنیاں دیوالیہ ہو جائیں گی, سرمایہ کار خوفزدہ ہو جائیں گے. 2008 کے کووڈ کے بارے میں انہوں نے بالکل درست پیش گوئی کی تھی اور اے آئی سرمایہ کاری پر انہوں نے اس وقت خدشات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 1920 کی دہائی کے آخر میں اسٹاک مارکیٹ کے غیر حقیقی جوش مجھے یاد آ رہی ہے, یعنی بہت ساری چیزوں کو ہم چاہے ریئل اسٹیٹ کی بات کریں تو ہم کہتے تھے ببل ہے ببل ہے, اسی طرح اسٹاک مارکیٹ میں بھی ببل دیا گیا تھا. انہوں نے رابرٹ نے کہا ہے کہ مجھے حقیقی تشویش ہے کہ آئندہ ایک یا دو برسوں میں دنیا ایک بڑے مالیاتی بحران کا شکار ہو سکتی ہے کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیٹا سینٹرز اور بجلی منصوبوں پر بے تحاشا سرمایہ لگا جا رہا ہے اور ممکن ہے کہ سرمایہ کاری سے مطلوبہ جو منافع ہے وہ حاصل نہ ہو. اگر ایسا ہوا تو سرمایہ کار اعتماد کھو بیٹھیں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ روزگار کے لیے بھی خطرہ ہے. رابرٹ پیسٹن کا خیال ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انقلاب صنعتی انقلاب کے بعد سب سے بڑی تبدیلی ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا خطرہ بھی وابستہ ہے. ان کے مطابق آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹس لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد کی ملازمتوں کو ختم کرنے کا باعث بن سکتے ہیں. اگر انہوں نے سوال کیا کہ اگر لوگ بے روزگار ہو جائیں اور اپنی روزی کیسے کمائیں گے, جب بڑی تعداد میں لوگ انکم ٹیکس ادا نہیں کریں گے, جب انکم ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو شہری سہولیات سے ہم کیسے خدمات حاصل کر سکتے, یعنی تمام کاؤنسلز گورنمنٹس انہی ٹیکسز سے خدمات دیتے ہیں. ان کی جو نئی کتاب ہے دا کل سوئچ, رابرٹ پیسٹن کی کتاب ہے دا کل سوئچ, انہوں نے ایک سنسنی خیز کہانی پیش کی ہے اور اس میں انہوں نے دا کل سوئچ میں مستقبل کا تصور پیش کیا ہے جہاں طاقت کے بھوکے ٹیکنالوجی ماہرین انتہائی طاقتور مصنوعی ذہانت اور جدید دماغی امپلانٹس کریں گے. امپلانٹس کے بارے میں آپ نے اسپیس ایکس کے بارے میں سنا ہی ہے کہ دے آر ورکنگ آن بندر کے ایک برین کے اوپر, بندر کے برین کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم نے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی جس میں ان کے برین کے ڈفرنٹ سینٹرز کا پتہ لگانے کے بعد ان میں چپس لگائی جا رہی ہیں تاکہ اب آپ امیجن کیجئے گا کہ وچ ڈائریکشن وی آر گوئنگ. بٹ اسٹل یو نو وٹ, ان کی کتاب ضرور دیکھیے, دا کل سوئچ ان کی کتاب کا نام ہے, مگر انہوں نے کہا ہے کہ پھر بھی امید برقرار ہے. وہ خود کو پر امید تصور کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے ممکنہ خطرات پر پہلے سے غور کرنا, اس کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اس سے بچنے کا طریقہ کار ہے. اگر دیر از سم ریزرویشن تو ہمیں یقیناً اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کی وارننگ ایسے وقت میں سامنے آئی جب اوپن اے آئی محقق ڈینیل کو کارٹر چلو بھی دعویٰ کر چکے ہیں. یہ اوپن اے آئی کے جو ایک फाउंडर हैं, उन्होंने भी ये दावा किया है कि मुस्तकबिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी सुपर इंटेलिजेंस बन सकती है जो कि इंसानों से ज्यादा तेज और ज्यादा सस्ती और ज्यादा मुअसर होगी, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में इंसानों की मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी। मुलाजमतें खत्म होंगी, टैक्सेस खत्म होंगे, शहरी सहूलियात में फुकदान होगा, तालीम के लिहाज से फुकदान होगा, तो गवर्नमेंट्स का यानी रेवेन्यू जनरेशन इस पे बराह रास्त असरअंदाज होगी। बहरहाल एक और पेशगोई भी मैं आपके, ये शख्स जिसने पेशगोई किया इसका निकोला अजला इसका नाम है, आई विश के अमर को मैं उसकी पिक्चर नहीं भेज सकी। ये माहिर नफ्सियात हैं, हिप्नोटिज्म के थेरेपिस्ट हैं और इनको नजूमी भी कहा जा सकता है। निकोलस अजूला इनका नाम है। 2026 के यानी वी आर इन द टू, इट्स मोर देन हाफ ईयर इज ऑलमोस्ट गॉन, इट्स सेवंथ मंथ जो कि हम आधे से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। ये जो निकोलस अजूला हैं, उन्होंने दावा किया है कि माजी में कोरोना वबा समेत बाज वाकयात की भी वो पेशगोई कर चुके हैं। अजूला के मुताबिक 2026 के बाकी हिस्से में सबसे ज्यादा जलजले बहुत आएंगे, आतिशफिशां पहाड़ों की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। यूनान, तुर्की, बहरुल काहिल, एशिया के इलाकों को उन्होंने अंदाजा लगाया है कि इन खित्तों में जलजलों और आतिशफिशानों की सरगर्मियों की में इजाफा हो सकता है। हॉलीवुड में भी उन्होंने कहा है कि हॉलीवुड में कानूनी तनाजात पैदा हो सकते हैं, बल्कि कल फॉक्स का एक मैं सुन रही थी पॉडकास्ट, तो उसमें भी जो फीफा वर्ल्ड के लिहाज से, फीफा वर्ल्ड कप के लिहाज से फॉक्स के एक एंकर हैं जो पेश कर रहे थे प्रोग्राम, वहां पे भी एक तनाजा खड़ा हुआ जरूर है। ये निकोला जूला ने यह भी कहा है कि हॉलीवुड में कानूनी तनाजात होंगे, डेफेमेशन के बहुत सारे केसेस किए जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि मस्नूई जहानत का जो बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, इसकी वजह से जॉब्स में बहुत कमी होगी। एलियंस से मुतल्लिक दावा किया, एलियंस से मुतल्लिक उन्होंने दावा क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि इस साल खिलाई मखलूक के जहूर से मुतल्लिक कोई बड़ा वाकया सामने आ सकता है, साइंसी बुनियाद सबूत मौजूद नहीं। मगर अगर आप अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र करें, जेडी वैंस का जिक्र करें, तो आपको पता है कि उन्होंने भी एलियंस के बारे में, यूएफओज के बारे में बातचीत की थी और उन्होंने कहा था, इवन अपनी ये जो वाइस प्रेसिडेंटशिप है वो संभालने से, बल्कि रिसेंटली उन्होंने कहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के पास हर चीज वो देख सकता है, मगर जाहिर है उसके पास उतने अख्तियारात नहीं, वो देख सकता है, इनका भी वादा था, क्योंकि अमेरिका की जो फाइल्स हैं उनमें बहुत सारे यूएफओज का तस्करा भी है, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको अनवेल करूंगा। तो अब जो निकोलस अजूला हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस साल यूएफओज के बारे में एक बहुत बड़ा कोई वाकया पेश आ सकता है। पुसरार बीमारी से मुतल्लिक भी उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने एक नामालूम बीमारी के जाहिर होने का दावा किया है जिसकी इलामत दिमागी शरियान फटने से मिलती जुलती हो सकती है, और तिब्बी जो इदारे हैं उन्होंने इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप से मुतल्लिक भी निकोलस अजूला ने कहा है कि उन्होंने एक मंजर देखा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप तैयारे से गिरते हुए दिखाई दिए, इनके मुताबिक ये हकीकी हादसे की बजाय सियासी अवामी जवाल की इलामत हो सकती है। नाइजल फराज और रिफॉर्म यूके, आपको पता ही है कि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ने अपना हलफ ले लिया है, उन्होंने ये भी कहा है कि बरतानिया की जमात रिफॉर्म यूके और इसके रहनुमा नाइजल फराज को मजीद अवामी हिमायत हासिल हो सकती है। अब राइटिस्ट जो हैं वो अपनी ताकत उनकी बढ़ती चली जा रही है। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल के मुतल्लिक भी उन्होंने कहा है कि अवामी तनाजा या मीडिया स्कैंडल का सामना आ सकता है। माजी की पेशकशों के बारे में भी निकोलस अजूला कहते हैं कि मैंने कोरोना की वबा की पेशकश की थी, बरतानिया में शदीद गर्मी एल नैनो की भी मैंने पेशगोई की थी, और जून के दौरान रिकॉर्ड दर्जा हरारत इस दफा आपको पता ये देखा गया, ना सिर्फ इंग्लैंड की बात करें इवन आप कनाडा की भी बात करें तो 14 जुलाई को रिकॉर्ड टूटा था 1996 का। उन्होंने ये पेशगोई की थी कि वेल्स जो रग्बी टूर्नामेंट जीतेगा, तहम ये पेशगोई उनकी एक जो है वो साबित नहीं हुई थी। अपनी रूहानी सलाहियतों के बारे में, दिस इज वो लोग जो देख रहे हैं, दिस इज निकोलस साइकिक हैं, हु प्रेडिक्टेड कोविड मेक्स डेंजरस 2020-26 प्रेडिक्शंस, दिस इज द मैन, जो लोग टेलीविजन देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाती दावे और पेशगोईयां हैं, इनकी साइंसी या सरकारी सतह पर तस्दीक मौजूद नहीं है। अपनी रूहानी सलाहियतों के बारे में इन्होंने कहा है कि 17 साल की उम्र पर अपनी गैर मामूली रूहानी सलाहियतों का मुझे एहसास हुआ और गहरे मराकबे के दौरान अपनी मुख्तलिफ गुज़श्ता जिंदगियों के मैंने मनाज़िर देखे। उन्होंने खुद को कभी भी मिस्री मलका, कभी हिमालिया की राहबा, कभी चीन की कोई अहम शख्सियत, कभी अफ्रीका की एक रवायती मौरज, हत्ता कि एक शेर की शक्ल में भी उन्होंने अपने आप को देखा। इनके मुताबिक इस तजुर्बे ने उन्हें यकीन दिलाया कि मौत जिंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि रूह मुख्तलिफ शक्लों में दोबारा सफर जारी रख सकती है। वेयर एज वी एज अ मुस्लिम डेफिनेटली बिलीव कि मौत आखिर नहीं है मगर हमारी रूहें रहेंगी। देयर इज अ डे ऑफ जजमेंट तक और ऑफ जजमेंट के बाद फिर यकीनन हम अपने ही अमाल का फायदा लेने के बाद या नुकसान लेने के बाद हमारी जिंदगी एक और तरह से जारी रहेगी। ये तो आखिरी लाइन मेरी जानिब से आपके लिए थी। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम साज़ो आवाज़, मैं आरिफा मुजफ्फर, एक दो स्पॉन्सर्स एंड आई विल मेक यू मीट विद अंजुम कुरैशी। फिर हम चलेंगे आपको लेकर के इंग्लैंड। इंग्लैंड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। प्लीज स्टे ट्यून्ड।
मेनू चाहिदा है फ्यूचर सिक्योर,
ती मेनू चाहिदी है फाइनेंशियल सिक्योरिटी मोर। ते फिर क्यों जाना किते होर? आज ही कॉल कमाओ इंश्योरेंस एडवाइजर साजनदीप सिंह नू।
तुहानू तुहाडियां लोड़ां मुताबिक बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी वधिया रेट ते लैके दिंदे ने।
लाइफ इंश्योरेंस, सुपरविजा इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, FHSA, ट्रेवल एंड विजिटर इंश्योरेंस, RRSP, RESP, TFSA। आज ही कॉल करो ऑल काइंड इंश्योरेंस दे इंश्योरेंस एडवाइजर साजनदीप सिंह नू। 647-99-21
वालों लो आ गया
बट कड़ाही पिकरिंग,
रवायती जायकेदार हलवा पूरी का नाश्ता कड़ाही, नहारी खोए वाले चने, दम कीमा तवे वाला, बटर और तिलों वाले नान, लस्सी और बेशुमार ऑप्शंस ऑफ योर चॉइस,
और कैटरिंग
बेहतरीन कैटरिंग चॉइस आपकी पेशकश बट कड़ाही पिकरिंग की।
150 लोगों की पार्टी का बैंक्वेट हॉल, मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट, 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग।
चलो फिर हलवा पूरी दन नाश्ता करन चलिए। 9058390002 बट कड़ाही पिकरिंग। जी साहब, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। मेरे साथ मोहतरमा अंजुम कुरैशी साहब हैं। मैं बेशतर इसके अंजुम कुरैशी साहब को ले गया हूँ। सैटरडे संडे को एक एक्सीडेंट हुआ, रात के वक्त हुआ। एक खातून जो है उन्होंने जे वॉक कर रही थी और ड्राइवर को फौरी तौर पर, ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद सीन से गायब हो गया था मगर बाद में उसको पकड़ तो लिया मगर उसको फिर तमाम बेल के ऊपर रहा कर दिया गया है। यकीनन जैसा हमने कहा कि औरत जे वॉक कर रही थी, जे वॉक कभी मत कीजिएगा मगर अगर कभी हादसा हो जाए, आपको चोट लगे, चाहे आप वॉक कर रहे हैं और किसी ने हिट किया है, तो ये कंपनियां उन लोगों को भी बेनिफिट लेके देती हैं। आप अंजुम कुरैशी साहब का नंबर नोट कर लीजिए, 4165700157 उनका नंबर है। अंजुम, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और हमने इस टॉपिक पे बहुत दफा बात की है कि अगर आपसे कोई हिट हो जाता है तो आपने जानबूझ के किसी को हिट नहीं किया, लेकिन जब आप वहां से भाग जाते हैं तो आप अपने आप को क्रिमिनली चार्ज करवा लेते हैं। अगर आपसे कोई हिट हुआ है, आप खुद रुके, चाहे वो जे वॉक कर रहे थे, ये तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है कि अगला पर्सन रॉन्ग था, आप सही थे। और फिर आप जब भाग गए वहां से तो इसका मकसद हुआ कि आपने सारा जितना भी ब्लेम था वो अपने सर पे ले लिया। अगर वो शख्स वहां रुक जाता, 911 को खुद कॉल करता और अगर वो आते तो वो इवन दो पेडिस्टेरियन को भी टिकट देते हैं अगर वो जे वॉक कर रहे होते हैं, और ये बिल्कुल आराम से बच जाता। लेकिन अब क्या हुआ कि जे वॉक का उसको तो मिलेगा जो पेडिस्टेरियन है, लेकिन इसका जो है ना, मतलब इसको जो है वो हिट एंड रन में चार्ज करेंगे, जो कि अच्छा नहीं होता। अब हम बात करते हैं उस पेडिस्टेरियन की जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसने जे वॉक किया, लेकिन क्योंकि बहरहाल वो हिट हुआ है गाड़ी से, तो वो अपने लिए अगर क्लेम लेना चाहते हैं तो उनका बिल्कुल क्लेम बनता है। अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है जिसमें आप पेडिस्टेरियन होते हैं, जिसमें आप गाड़ी में होते हैं, आप किसी को हिट कर देते हैं, आपको कोई हिट कर देता है, लेकिन कहीं पर भी ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप किसी को मारें और वहां से भाग जाएं, क्योंकि आजकल अक्सर लोगों के पास डैश कैम होता है, आपके पास लोग जो है नोट कर लेते हैं जब गाड़ी भागने लगती है, तो आपके लिए ज्यादा मुसीबत होती है। और अगर ये सारी चीजें ना भी भी हो तो इंसानियत नामी एक चीज है। और जब हम कनाडा में रहते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर कानून का इम्प्लीमेंट है, और अगर कोई भी अगर आपको हिट करता है या आप किसी को हिट कर देते हैं तो आपने इंश्योरेंस दी ही इस वजह से है कि अगर कोई कार एक्सीडेंट हो जाता है एट फॉल्ट नॉट एट फॉल्ट। तो अंटारियो में दोनों सूरतों में अगर आपको एट फॉल्ट 100% है, अगर आपको गाड़ी का अगर फर्ज कीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया तब भी आपको इनकम रिप्लेसमेंट मिलता है, आपको बेनिफिट के पैसे मिलते हैं, आपको पर्सनल इंजरी के पैसे मिलते हैं। तो आपको अगर कोई चोट लग गई है, आपको कोई तकलीफ है और अगर आप लॉयर ढूंढ रहे हैं तो हम कहते हैं कि रिकमेंडेड है कि आप हमें कॉल करें। हम न सिर्फ आपके क्लेम का पैसा आपको दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी 416-570-0157 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और किसी भी कार की सूरत में आप हमें बातचीत कर सकते हैं। और जो पेडिस्ट्रेरियन हिट हो जाते हैं उनको उस इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन मिलती है और उनको बाकायदा इलाज का भी पैसा मिलता है। 416-570-0157। थैंक यू,
बहुत शुक्रिया अंजुम कुरैशी साहिबा का नंबर 416-570-0157। प्रोग्राम सुन रहे हैं आरफा मुजफ्फर। 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, कल अलबत्ता बारिश होगी, शाम को 24 होगा 19 होगा, यानी आज सूरज और उसकी बादलों की आंख मिचौली आपको देखने को मिलेगी, कल अलबत्ता बारिश है। वीकेंड पे तो बहुत शदीद बारिश हुई और बड़ी थोड़ी देर के लिए ये बारिश हुई और उसके बाद फिर टोर्नेडो वॉच के बारे में हमें अलर्ट्स मिलते रहे। हमारे साथ ये क्यों आए, हमदा जरदारी साहब मेरे साथ हैं। जरदारी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे साथ हैं, उसके बाद मैं फौरन बाद आपको मैंने ले लिया, इसके फौरन बाद मैंने क्योंकि इंग्लैंड की तरफ लेकर के चलना है। डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब मेरे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं?
अल्लाह का बहुत शुक्र है जरदारी साहब।
लास्ट वीक मैंने क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन मलिक साहब से पूछेगा कि जो बलूचिस्तान और ग्रेटर बलूचिस्तान का जो आका चल रहा है और जिसके पीछे तो वो कुवते हैं इसराइल अमरीका यूएई इंडिया अफगानिस्तान, तो उस पर डिस्कस कीजिएगा कि जो आजकल ये ईरान का जो सिनेरियो बना हुआ है तो जो बलूचिस्तान का इलाका ईरान में है और दो तीन सूबे अफगानिस्तान में है, फिर ये पाकिस्तान में सिराइकी बेल्ट पंजाब में पूरा सिंध बमौजूद, ये तो सारा फिर बलोचों से मुश्तमल है। फिर अगर इस तरह की कोई साजिश चल रही है और उसको फंडिंग कर रही है और बलोच अपराइजिंग बलूचिस्तान में हो रही है और वहां उनके पास जदीद असला और उनको फंडिंग बाहर से मिल रही है, जिसमें मरकजी किरदार जो इंडिया का इसराइल का अफगानिस्तान का यूएई का अमेरिका का है, तो उस पर खुल के डिबेट करें, लोगों को बताएं। ये मेरा क्वेश्चन रखें, थैंक यू। यही
बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा सवाल है आपका, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब यकीनन हमारे साथ लाइन पे ही हैं, ही मस्ट हैव हर्ड योर मैसेज, मगर ऑफ कोर्स इन तमाम के साथ साथ मेरा कंसर्न है। आज एक गुड न्यूज मेरे और आपके सामने आई है और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अनीता आनंद साहब जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, वो अपने सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं और 20 साल के बाद किसी भी कैनेडियन जो अफसर है उसका पाकिस्तान का दौरा, दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात है उसमें बड़ी अहम पेशरफ समझा जा रहा है। उन्होंने आज इसहाक डार साहब से मुलाकात की, इस्लामाबाद पहुंचने के बाद कैनेडियन वजीर खारजा अनीता आनंद ने पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार से मुलाकात की। कैनेडा और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी, तावन और खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत भी हुई। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का और इक्तसादी तावन बढ़ाने और अवामी रवाबत को फरोग देने पर भी गुफ्तगू हुई। सिंध ताज के जो मुआहदा है मुलाकात का अहम मामला है। कैनेडियन वजीर खारजा से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के नायब वजीराजम इसहाक डार ने सिंध ताज मुआहदे का मामला भी उठाया। उन्होंने कनाडा से मुतालबा किया कि बैन अल-अक़वामी कवानीन और मुआहदों की पासदारी के लिए अपना किरदार अदा करे और भारत के साथ 1960 के सिंध ताज मुआहदे की बहाली में तआवुन करे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी का तनाजा यकीनन आप लोगों को पता ही है। कनाडा और पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात, पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मजबूत अवामी इक्तिसादी तवाबित मौजूद हैं। कनाडा में 3 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी नजाद अफराद आबाद भी हैं और कनाडा में पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा तजारत तकरीबन 1.2 अरब 2025 कनेडियन डॉलर में 2025 में ये रही। कनाडा की पाकिस्तान को बरामदात में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। اسحاق ڈار سے ملاقات کر لی اور شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی توقع کی جا رہی ہے. انیتا آنند کا اس کے بعد فلپائن کا دورہ کریں گی. لیٹس سی ہاؤ اٹ ورکس. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں, اور آج تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے کور کرنا ہے. اور آئی ریکویسٹ کہ اگر ہم ظاہر میری دا موسٹ امپارٹنٹ واز انیتا آنند صاحبہ کا پاکستان جانا 20 سال کے بعد فرسٹ ٹائم, حالانکہ بہت سارے پاکستانی یہاں بستے ہیں, کسی بھی وزیر خارجہ نے اس طرح سے دورہ کیا. سنتاز کا معاملہ بہت برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے اس وقت, آج تو بلکہ پانی کی سطح بہت بلند ہے کیونکہ انڈیا پاکستان میں بھی بہت ساری بارشیں ہوئی ہیں, بہت سے علاقے زیر آب بھی آئے, اسکول بھی گرے. دوسری طرف اگر میں ذکر کرتی ہوں تو پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے چینی ٹیرورزم کے جو واقعات ہیں ان میں بھی شدید اضافہ ہے, اور اسی تمام کو ملا کے ابھی ہمارے جو حمزہ زرداری ہیں ان کا ایک سوال کہ بلوچستان نہ صرف یہاں بلکہ ایران میں بھی اس کے کچھ علاقے ہیں, افغانستان میں بھی کچھ علاقے ہیں, ادھر سرائیکی تک یہ آتا ہے, تو کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں آپ؟
اعوذ باللہ بسم العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لما تقولون ما لا تفعلون صلت اللہ علیہ وسلم رب شرح لی صدری یسر لی امری ورل مقدر من لسانی یفقہ قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین. بہن بہت شکریہ آپ نے مجھے حمزہ زرداری صاحب کے سوال سے ہی آغاز کرنے کا موقع دیا. ملین ڈالر کوشچن, میں یعنی خود بھی چاہتا تھا کہ آج پر بات ہو جائے. دراصل بات یہ ہے کہ بلوچستان کا گریٹ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے ایران امریکہ کی جنگ سے بہت پہلے کا ہے. اگر آپ یاد ہو تو کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے معاملہ ہمارے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے, گریٹ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے سی پیک شروع کیا تھا, سی پیک کے فوراً بعد جو تھا اس میں ہنگامے شروع ہو گئے. امریکہ نے بہت کوشش کی, امریکہ نے ہماری آرم ٹیسٹ کرنے کی بہت کوشش کی. اس کے علاوہ اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو جب امریکہ افغانستان کے اندر تھا تو اگر یعنی آپ جتنا بھی اسپیس کا جاتا تھا اس وقت تقریباً کوئی 1000 کے قریب کنٹینرز امریکہ کے بلوچستان کے راستے میں غائب ہو گئے تھے. اور یہ غائب کیسے ہو گئے, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے بغیر طور پر یہ سیکورٹی فارم کی تھی کہ یہ کنٹینرز ہم اپنے مرضی لے کے جائیں گے, لیکن امریکہ نے کہا تھا کہ نہیں ہماری اپنی سیکورٹی ہوگی, ہماری اپنی سیکورٹی جو ہے یہ کراچی پورٹ سے لے کے افغانستان کے اندر تک لے کے جائے گی. کوئی ہوا امریکن کی اپنی سیکورٹی, جو پرائیویٹ سیکورٹی جس میں سے جو کنٹینر غائب ہوئے تھے وہی کنٹینر جو تھے وہ بلوچ آرمی کو دیے جا رہے تھے. اس وقت سے یہ پروگرام شروع ہے اور باقاعدہ طور پہ ابھی غور جاری تھی بش کے آخری زمانے میں باقاعدہ طور پہ ہندوستان کو موقع دیا گیا تو افغانستان کے اندر آ جائے. اور باقاعدہ طور پہ ہندوستان نے اپنے 6 کونسل سیکشن بنائے, وہاں پہ کونسل خانے بنائے, اور 6 کونسل خانوں کا جتنے بھی تھے وہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ کونسل بنائے گئے تھے. اس کا مقصد یہ تھا کہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کو سیبوٹاج کیا جائے ٹیررزم کے بارے میں. اور امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ تاکہ ہم باقاعدہ طور پر پاکستان کا آرم بھی ٹوسٹ کرتے رہیں, لیکن جب وہ تمام بات ناکام ہو گئے اور بالآخر ٹرمپ صاحب کے جو پہلے دور اقتدار میں جب وعدہ ہو گیا طالبان کے ساتھ قطر کے اندر, تو وہاں بھی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی بلین ڈالر کا اسلحہ جو ہے امریکہ وہاں پہ چھوڑ کے آیا تھا. یہ امریکہ اگر اپنی فوج نکال سکتا تھا تو اپنا اسلحہ بھی لا سکتا تھا. یہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ اپنا اسلحہ وہاں پہ چھوڑ آیا؟ امریکہ وہ اسلحہ باقاعدہ طور پہ جہاں پہ ڈمپ کر کے آیا تھا وہ اپنی پراکسی تھی ان کے لیے چھوڑ کے آیا. لیکن جب طالبان آئے تو فوری طور پہ ہندوستان کے طالبان کے ساتھ تھے تعلقات تھوڑے سے مراسم تھے وہ تھوڑے دور ہو گئے. اور لیکن وہ جتنی بھی چیز اگر آپ کو یاد ہو تو داعش کو ٹرمپ کے زمانے میں ہی وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا تھا, اور ٹی ٹی پی بھی وہیں پہ موجود تھی ہندوستان کے اندر بھی, اور ٹی ٹی پی کا بھی بہت بڑا جو ایک نیٹورک جو ہے وہاں تیار کیا گیا تھا. مقصود صرف یہی تھا کہ بلوچستان کو کسی طریقے سے مطلب پاکستان کو بازو میں روڑا جائے تاکہ سی پیک سے باز آ جائے. لیکن جب دیکھا کہ سی پیک نہیں, پھر ہماری ایک حکومت بھی آئی اس کے زمانے میں 2.5 سال جو ٹرنیور تھا, 2.5 سال کے درمیان سی پیک پہ کام بالکل بند رہا. اب یہ بات تو چھپی ہوئی نہیں ہے, لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ سی پیک کا شروع ہوا اور دن رات شب روز اگر آپ کو یاد ہو تو اس زمانے میں باقاعدہ طور پہ چائنیز پہ حملے بھی ہوئے, بہت سے چائنیز مارے بھی گئے. چائنا اور پاکستان کے درمیان بہت سی جو تھے دور کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر بہت سے پروگرام بھی کیے گئے. لیکن پھر اس کے باوجود اگر آپ کو یاد ہو تو چائنا نے باقاعدہ طور پہ سی پیک پہ کام تو بند کر دیا, اپنے کچھ لوگ بلا بھی لیے, لیکن اس کے باوجود چین نے اپنا سی پیک چھوڑا نہیں, کیونکہ سی پیک پر بڑی اس کی انویسٹمنٹ ہو چکی تھی. ये 68 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी जो कि बढ़ते बढ़ते स्थिति में आज 90 बिलियन से भी कहीं ज्यादा ऊपर चली गई है। अब तो सीपैक 2 भी साइन हो चुका है, क्योंकि अब जब से ये नई हुकूमत आई है, नई जो मौजूदा हुकूमत है, सीपैक पे दिन रात काम चल रहा है। हमारी पाकिस्तान की आर्मी उसे बिल्कुल कंट्रोल कर रही है। आपने देखा होगा कि अब बहुत देर से जब से ये हुकूमत आई है और जो सीपैक काम चल रहा है, कभी कभी कोई आपको यह हमला नजर नहीं आया होगा कि चाइनीज पे हमला हुआ हो। लेकिन अब दूसरी तरफ आइए, ये हमले आज क्यों तेज हो गए? मैं हमजा जरदारी साहब के सवाल की तरफ फौरन तौर पर आना चाहता हूं, क्योंकि बहुत थोड़ा है। मैंने जैसे पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि प्रोग्राम अमरीका का प्रोग्राम सिर्फ ईरान पर हमला करने का मकसूद कुछ और भी था। को आप कुछ नजर आते हैं, कुछ देखते हैं, धोखा ये बाजीगर खुला। आप ये देखिए कि चीन ने आज से 3 साल पहले, जब बीआरए का 4 साल पहले सॉरी 2022 में ऐलान किया था 5,000 बिलियन डॉलर की कॉस्ट थी, उसमें चीन ने ये ऐलान किया था कि हम दुनिया को तजारत के जरिए फतह करेंगे, फौज के जरिए नहीं। और वो एक ऐसा सर्दी प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया जो कि अमरीका को बहुत कॉर्नर कर रहा था। अमरीका की और यूरोप की इकोनॉमी जो थी उसे बड़ी जिक पहुंच रही थी। इन्होंने बकायदा प्रोग्राम बनाया कि हम जंगी तौर पर तो चीन को केटर नहीं कर सकते, उससे कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वेनेजुएला पे कब्जा किया, वेनेजुएला इस पे कब्जा किया गया कि वेनेजुएला में क्या है अमरीका के लिए। सिर्फ तरीकाकार यह था कि वेनेजुएला चीन को हर रोज 80,000 बिलियन बैरल का तेल सप्लाई कर रहा था। उन्होंने कोशिश की कि चीन के जो हब हैं, जो तेल से आपको लाभ भी पता है कि सारी इंडस्ट्री जो है पेट्रोल से चलती है, एनर्जी से चलती है, उनका एनर्जी के हब बंद कर दिए जाए। उन्होंने 80,000 बैरल रोज की यौमिया जो थी, जो उसकी तरसील थी वेनेजुएला से, उसे बंद कर दिया गया। ये लाजमी बात है, आप सोचिए कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा चीन की सर्दी तरक्की को। फिर ईरान जो था, ईरान 135,000 बैरल रोज के से दे रहा था। ईरान पे भी इसलिए हमला किया गया, आप इसलिए बंद किया गया ताकि ये भी ये दूसरा बड़ा हब था जो कि वो उसका चीन का बंद किया गया। फिर तीसरी बात ये थी कि चीन जो है वो सऊदी अरब से भी तेल ले रहा है और वो भी स्टेट होमस होकर उसका रास्ता थोड़ा गुजर कर जाता है, वहां पे वो भी बंद कर दिया गया। वो उन्होंने चीन की नाकाबंदी करने के लिए, चीन को संती तौर पर मफलूज करने के लिए सारा ड्रामा जो है ये किया गया और इस बकायदा काम किया गया। अगर आपको याद हो तो चीन ने बकायदा तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया था, अगर चीन जब टैरिफ का मामला हुआ था, तो जब टैरिफ बढ़ने का मसला हुआ था, आपको याद होगा मिनरल्स का भी झगड़ा चला था। मिनरल्स को, जो मिनरल का बहुत बड़ा, क्योंकि दुनिया में सिर्फ चीन के पास कारखाने मौजूद है जो मिनरल को प्योरीफाई करते हैं, और ईरान की मिनरल जो चीन खुद, अमेरिका जो मिनरल निकालता है वो भी चीन को भेजता है प्योरीफाई करने के लिए, और 70% उसका कारोबार जो सिविलाइजेशन का जो दारोमदार है, असले का जो है, जहाजों का जो दारोमदार है, वो उस मिनरल में चलता है। चीन ने उसे बंद कर दिया उसके जवाब में। अब अमेरिका का जो सर गया था द्वारा, अगर आपको याद होगा चीन की और उसका ईरान की और अमेरिका की जब जंग शुरू थी, जब थोड़ी सी जंगबंदी हुई, तो ट्रंप साहब जो चीन के दौरे पे गए, तो लास्ट सारी दुनिया का पता चल गया कि चीन का दौरा ट्रंप साहब का बुरी तरह फेल हो गया। अब एक बात ये भी याद रखिए कि चीन का ईरान के साथ भी, जिस तरह पाकिस्तान के साथ मुआहदा है, उसने चीन ने ईरान के अंदर भी 460 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे बाहर का और से दूसरे रूस के जो रास्ते हैं उनके साथ कारोबार करने के लिए। हमारे साथ तो खैर सीपैक का है, लेकिन ईरान के साथ ये भी मौदा है चीन का कि अगर ईरान चाहे तो चीन अपनी 50,000 फौज मसल्ला ईरान के दफा के लिए भेज सकता है कहीं, यानी अभी तक वो नौबत नहीं आई। अब ये देखिए कि अब चीन ने क्या किया है कि चीन ने इसके जवाबी तौर पर ईरान को क्या तौर पर अपने सेटेलाइट से मालूम फराहम करनी शुरू कर दी, और उसने उस मालूम के तहत जो है डेगोगार्सिया तक चीन और ईरान ने अपने मिसाइल से अमेरिका का पीछा किया। यही वजह है कि यहां से अमेरिका फौरी तौर पे, शुरू में तो अपने बेड़े लाया था, 5th V 6th फ्लीट भी लाया था, लेकिन दोनों को निकाल के ले गया जब उनको नुकसान पहुंचा और जान को नुकसान पहुंचा। अब इसमें कोई शक नहीं कि इतराई दिनों में अमरीका ने और इसराइल ने मिलकर ईरान को खासा डंट डाला है, उनकी जहाजों को वर्क किया, नेवी को गर्क किया है, बहुत से उनके जहाजों को तबाह किया है, लेकिन ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको आज तक वो टिकेटर नहीं कर सका, उसको नहीं कर सका। प्रोग्राम अमेरिका का ये भी था, सिर्फ यही नहीं था कि चीन को नाकबंदी की जाए, उनका प्रोग्राम ये था कि जिस तरह हमने वेनेजुएला पे कब्जा किया है, इस तरह हम ईरान पे भी कब्जा कर लें, क्योंकि इसराइल ने बहुत देर से इसराइल ने कोशिश कर रखी थी कि भी किसी तरीके से ईरान पर कब्जा किया जाए, और ईरान को उसने खतरा शो किया, जैसे कि इराक को एक बहुत बड़ा दुनिया के लिए खतरा पेश करके हमला किया गया था, और इसराइल को किराए का सिपाही है अमेरिका का यहां पे, उसने बहुत कोशिश की। आज पेंटागन के और अमेरिका के बहुत से लोग जो है इस बात की गवाही दे रहे हैं आप देखिए उनका मार्क वो भी कह रहा है, अगर डीवेंस ने भी खुला ही कहा है, उसने कहा कि इसराइल को अपने वजरा को लगाम देनी चाहिए अगर अमरीका ना हो, और अमरीका इसराइल के असर ना फराम करता हो तो आज इसराइल का नामो निशान ना हो दुनिया के नक्शे के ऊपर। यानी गोया पहली दफा आप देखिए पिछली 7 दहाइयों में पहली दफा इसराइल और अमरीका के दरमियान ऐसी सियासी चपलिश हुई है, तो जो इस नंबर पहुंची है कि ये बयान बाहर सामने भी आ रहे हैं। कुछ लोग इस नूरा कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे
बहुत शुक्रिया, यकीनन आपने इसका बड़ी तफसील से बात की, बट वी कुडंट गेट द आंसर, क्योंकि अमेरिका अशखास पाकिस्तान के अशखास का खासतौर पर जिक्र कर रहा है, जिसमें हमारे फील्ड मार्शल भी हैं। ये क्वेश्चन रेज किया था जनाब अजीम मियां साहब ने, बड़ा खूबसूरत सवाल किया था कि अयूब खान के दौर में भी अयूब खान को बहुत पज़ीराई मिली थी, मगर पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दिया गया था बहसियत कंट्री, क्योंकि अशखास आते जाते रहेंगे, मुल्क ने वहीं पे रहना है। आपने जब जिक्र किया जो जरदारी साहब का सवाल था कि अगर मैं बलूचिस्तान का जिक्र करती हूं तो हम इंडिया को तो फौरन ब्लेम कर देते हैं, मगर इंडिया के साथ अमेरिका की इसराइल को सरपरस्ती अमरीका की हासिल है। अगर हमारे अशखास की वो तारीफ करते हैं तो यकीनन हमारे अशखास को चाहिए कि वो ये क्वेश्चन रेज करें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान को प्रोटेक्ट किया जाए, यानी ये ममालिक जो है अमेरिका अपना रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए, ईरान की भी जंग चल रही है, जाहिर है उस वॉर में लग रहा है कि इसराइल के अहदाफ पूरे हो रहे हैं, मगर असल हदफ जो अमेरिका का है आपने बड़ी तफसील से बताया कि दैट इज चाइना। अब मेरा कंसर्न यहां पे ये है कि वो अशखास जिनको बहुत पजीराई अमेरिका दे रहा है और हर जगह हाथ पकड़ता है, क्या वो अपने मुल्क के लिए कि हमारे जो अनस्टेबिलिटी है इन बलूचिस्तान, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें अभी तक कोई वाजे तौर पे सबूत नजर नहीं आया, क्या फरमाएंगे?
आप सही फरमा रही हैं। बात यह है कि मैं जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि हैं क्वाकब कुछ नजर आते हैं कुछ, मसला यह है कि ईरान के अंदर अमेरिका ने जब बकायदा तौर पर मुजाहरे करवाए और वो सोच रहा था कि बकायदा तौर पर ईरान को हम इस तरह काबू कर लेंगे जिस तरह वेनेजुएला किया है, और अगर आपको याद हो तो आपके जो ट्विटर के जो मालिक हैं इनका जहाज जब पकड़ा गया अफगानिस्तान के अंदर, जो स्टारलिंक के जो 35,000 जो उनकी वॉइसेज जानी थी, उसी दिनों में अफगानिस्तान से हमले करवाए गए पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के जवाब में वो तमाम मुसीबत धरे का धरा रह गया, वो जा नहीं सके, क्योंकि अमरीका का बाकायदा प्लान था कि ये डिवाइसेज पहले भेजी जाए, 35,000 डिवाइसेज वहां पर भेजी जाए ईरान के अंदर, फिर इनको दाश के लोगों को जो 25,000 जो पे रोल पे हैं उनको दाखिल किया जाए, फिर टीटीपी को शामिल किया जाए, उधर से कुर्दों को भेजा जाए। ये ट्रंप साहब तो बकायदा अपने ईरान में क्या ट्रंप ने ये बात नहीं कही, क्योंकि उनका प्रोग्राम यही था कि हम ईरान जब कब्जा कर लेंगे तो फिर ईरान के 5 टुकड़े करेंगे और सिस्तान बलूचिस्तान दोनों को मिला के ग्रेटर बलूचिस्तान बनाया जाएगा, ये इनका बकायदा प्लान था, और पाकिस्तान इस प्लान को ईरान को दोबारा शाम बन से बचाया। ये पाकिस्तान को बड़ी उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि यानी मैंने जो आर्मी मीडिया थे वहां भी मैंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा, लेकिन ईरान को अमरीका फंस चुका है, अमरीका जितनी भी तारीफें कर रहा है पाकिस्तान की ये उसकी मजबूरी है, पाकिस्तान भी ये समझता है। अगर आपको याद
क्या पाकिस्तान की वो अहम शख्सियात
चार बड़ों की मीटिंग हुई थी, उसमें एक उर्दुगान की और पाकिस्तान की जो मीटिंग हुई थी उसमें बकायदा तौर पर यह तय पाया था कि हमने ईरान को बचाना जो है खुद को बचाना है, क्योंकि ईरान अगर टूटता है तो उसका असर जो है तुर्की और पाकिस्तान में पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो टारगेट होंगे वो तुर्की और पाकिस्तान। आपने देखा नहीं
ईरान, मगर सर मैंने आपको अजीम मियां साहब की वही स्टेटमेंट आपसे अयूब खान के दौर में जो उन्होंने दी थी कि अशखास, तब भी अयूब खान को बहुत हाईलाइट किया गया था, अब भी अशखास का जिक्र होता है, मगर पाकिस्तान के तहफ्फुज के लिहाज से क्या हमारी गवर्नमेंट की वो अराकीन जो इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, आज कनाडा की वजीर खारजा भी पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान की एज ए मीडिएटर बहुत तारीफ भी की जा रही है, क्या वो इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए शुड प्रूव समथिंग? अभी आपने जिक्र किया कि वो 18 जहाज गायब हो गए थे जिनके बीच में असला था, किसको दिया गया था? बलूचिस्तान में दिया गया था, किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था, किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। तो पाकिस्तान के वो यानी अशखास तो بن گئے، مگر کیا ان اشخاص نے اس سرزمین کے تحفظ کے لیے کوئی ان کی ریزرویشنز کا اظہار کیا؟
دیکھیے بڑا اچھا کوشچن آپ کا. بات یہ ہے کہ میں نے پھر آپ سے دوبارہ اس کر دوں کہ یہ پاکستان کا اب ہیلی کاپٹر کو دیکھ لیجیے، امریکہ کے اندر جو بہت بڑے ڈیفینس اینلسٹ بھی ہیں، پولیٹیکل اینلسٹ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، ساری دنیا جنگ چل رہی ہے، 30 ممالک نے کوشش کی کہ کس طرح یہ جنگ بند ہو جائے، دنیا عالمی تباہی طرف نہ جائے، اور وہ ناکام ہو گئے، اور جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے اس نے یہ کام کر دکھایا، اس کا نام ہے پاکستان. یہ میں آپ کے پڑوس میں امریکہ جن اس کا میں ذکر کر رہا ہوں، پینٹاگون میں بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے، نیو یارک ٹائم میں بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، واشنگٹن پوسٹ نے تو بغیر طور پر ایڈیٹوریل لکھے. اور لیکن اس کے ساتھ یہ بھی میں آپ سے کر دوں، میں نے اس زمانے میں یہ کہا تھا، میں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کا جو پاکستان نے صلح کرائی امریکہ کی، پاکستان کو انعام ملا یا اس کا سلا ملا یا اور نتائج؟
سر میں آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس چھوڑیں پہلے، میں انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ کی انپٹ چاہتی ہوں.
افراد پہ آ رہا ہوں، افراد ہمارے اس لیے ان کی تعریف ہو رہی ہے تاکہ امریکہ اس سے کام لے. امریکہ کا ہمیشہ سے کام رہا ہے، تو افراد سے کام لیتا ہے، اس کے بعد جو ہے ٹوائلٹ پیپر کی طرح سے پھینک دیتا ہے. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، امریکہ کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ امریکہ جس کا دوست ہوا سب سے بڑا دشمن اس کا ہوتا ہے.
بالکل صحیح آپ نے کہا، بالکل صحیح کہا. وہ کرنل صاحب جنہوں نے اسامہ بن لادن کی باقاعدہ جا کے پکچر دی تھی ان کے کمپاؤنڈ کی، ہی از لیونگ سچ اے لیوش لائف. میں اس میں آپ اور مجھے بحثیت پاکستانی، جس کو موقع ملتا وہ اتنا ہی کام کرتا ہے، ہم تو بڑی فخر سے ان کرنل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں اترواتے ہیں، اینڈ وی فیل گڈ اباؤٹ اٹ. مگر میرا خیال ہے، مجھے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے کہ قوم کا مورل فائبر ویک ہے. سر میں آپ کو لے کر کے آنا چاہتی ہوں مڈل ایسٹ کی طرف. اسٹیٹ آف ہارمز یقیناً ایران نے بلاک کیا، امریکہ نے اپنی بلاکیڈ ڈال دی، سعودی عربیہ نے متبادل راستہ اختیار کیا، اور مڈل ایسٹ میں یونائٹڈ عرب امارات اور سعودی عربیہ کی آلریڈی ایک رفٹ چل رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا یمن میں جو کچھ بھی ہوا، اور پھر اس کے سامنے سوڈان کا جو صورتحال. آج ہوتھی باغیوں نے، جو کہ کہا جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا تو اس کو نو بڈیز اس کو ظاہر نہیں کر رہا، تو انہوں نے ریڈ سی کا وہ حصہ بلاک کر لیا جس میں 7% مزید آئل ٹینکرز کی کمی بلاک کیا جائے گا، اور دنیا میں آئل کی ترسیل مزید کم ہونے کے بعد بحران بڑھے گا. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک کر لیے، ہاؤ ڈو یو تھنک کہ امریکہ جو یونائٹڈ نیشنز کی کسی پالیسی کو ہی نہیں مان رہا، تو پاکستان کے یہ اشخاص یا اس علاقے میں کیا رول؟ دے آر جسٹ لوکنگ دیئر سپرمیسی.
اب گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے واپس درج کروں کہ اسرائیل کی اور امریکہ کے وہ طبقے جو کہ اسرائیل کی مشکلہ کر رہے ہیں، ان کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو بڑھایا جائے، اور اس جنگ کے اندر مسلمان ملکوں کو انوالو کیا جائے، اس میں سعودی عرب، بحرین، قطر اور کویت ان کو بھی شامل کیا جائے، اور اردن کو باقاعدہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ اگر سعودی عرب اس میں انوالو ہوتا ہے تو پاکستان کا کوئی ڈیفینس پیکٹ ہے تو پاکستان اس میں انوالو ہوگا. پاکستان ایک بڑی دو دھاری تلوار پہ چل رہا ہے، پاکستان اس کی قیمت بھی پے کر رہا ہے، جس طرح حمزہ زرداری صاحب نے سوال میں کہا، یہ ہم قیمت پے کر رہے ہیں. کیونکہ پہلے کام چل رہا تھا، ہم اس پہ قابو پا رہے تھے، لیکن پھر صلح کی جو میز ہم نے بچھائی، صلح کی جو بساط بچھائی، معاہدہ ہم نے کروا دیا، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر دباؤ بڑھ گیا. آپ کا سوال کی طرف میں اب آنے لگا ہوں. بات یہ ہے کہ اس پہلی دفعہ پاکستان نے ایران کو متنبع کیا. آپ نے جو اسرائیل پہ جو سعودی عرب پہ جو حملہ ہوا اس سے متنبع کیا، اس نے کہا کہ ہم ان کے ڈیفینس الائی ہیں، ہم آپ ایران سے کہتے ہیں کہ ایران جو ہے بغیر سعودی پہ حملہ دوبارہ نہ کرے، سعودی کو نقصان نہ پہنچائے، اس کی سلامتی ہماری سلامتی کے برابر ہے. اس کے فوراً بعد ایک ایسا بحران بھی پیدا ہو گیا اور تلاتے بھی پیدا ہو گیا. اس کے جواب میں آج پھر سے آپ یہ دیکھیے کہ باقاعدہ طور پہ عارضی جنگ بندی کا مطلب کوشش کی جا رہی ہے کہ 20 دنوں کی جنگ بندی فوری طور پہ کروائی جائے، اور وہاں بیٹھ کے پھر دیکھا جائے کہ اس دوبارہ معاہدے کے بعد اس کو کس نے سیبوٹائز کیا ہے، وہ کیا وجوہات ہیں جن میں سیبوٹائز کیا. تقریباً 9 کے قریب جو وجوہات نکلی ہیں، وقت نہیں ہے وغیرہ، وہ بھی آپ سے کرتا ہے کہ اس 9 کو پھر سے دوبارہ ری شیپ کیا جائے تاکہ اس معاہدے کو چلایا جائے. امریکہ کے کچھ لوگوں نے بیک ڈور چینل پہ اس پہ بات کا آغاز بھی کر دیا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایران کے کچھ ڈیلیگیشن جو ہیں باقاعدہ طور پر پاکستان میں موجود ہیں، ایران کے وزیر داخلہ بھی اور دوسرے لوگ جو ہیں ہائی لیول کے جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پہ پاکستان میں موجود ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ نو فلائی زون کے اندر باقاعدہ جہازوں کا سفر کرنا جن کسی کے آنا جانا ہر صرف مطلب ہے یہ کوئی خطرے سے خطرے خالی نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر بات نہیں ہو سکتی کہ خدشہ ہے کہ کچھ چیزیں لیک ہو جائیں گی لیک نہ ہو جائیں. باقاعدہ طور پہ آپ کے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہیں, وہ بھی دو دفعہ ایران تین دفعہ ایران جا چکے ہیں. ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں وہ بھی محسن اقبال وہ بھی جا چکے ہیں, ہمارے شہباز شریف وہ بھی جا چکے ہیں. ترکی کے ساتھ بھی پاکستان کا مطلب سلسلہ یہ چل رہا ہے سارا. اس سارے معاملے کو کلوز اپ کرنے کے لیے جو طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو طاقتیں جو کہ معاہدے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ایک اور عالمی جنگ کی طرف دعوت دے رہی ہیں اس کو روکا جائے. اور پاکستان اس میں پھر سے متحرک ہے, اس کے ساتھ قطر اس کا پوری طرح ساتھ دے رہا ہے. اور قطر نے اور پاکستان نے مل کے آج دونوں افریقوں کو امریکہ کو اور ایران کو پھر سے دوبارہ بیک ڈور جو چینل ڈپلومیسی ہے اس میں لا کے بٹھا دیا ہے اور کام شروع ہے اس بات پر.
شکریہ. یہاں پہ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پہلے بھی انٹرنیشنلی بھی کہا جا رہا تھا کہ امریکہ نے یہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, بٹ انفارچونیٹلی جڈی وینس نے کہا کہ اسرائیل از اسپینڈنگ الاٹ. اور مجھے بھی پتا ہے کہ بال روم میں ایک باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام لوگوں کو پیسہ دیا گیا, ان کو ٹی اے ڈی ایز دیے گئے, یعنی وہ اپنا بیانیہ, اور اس میں بے شمار پاکستانی بھی موجود تھے, بے شمار مسلمان بھی موجود تھے, جسٹ اپنا بیانیہ. اور جڈی وینس نے اس چیز کا باقاعدہ تذکرہ بھی کیا